नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। तिब्बत में चीन के नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के निर्धारण संबंधी विधेयक अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पेश। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा और लोगों को संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि चीन ने मौजूदा क्षेत्रीय संकट के दौरान ईरान को सैन्य सहायता दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास चीन में बने कुछ सैन्य उपकरण जरूर हैं, लेकिन हाल के संघर्ष में चीन की किसी भी ऐसी कार्रवाई का पता नहीं चला है जिससे सैन्य संतुलन प्रभावित हुआ हो। श्री रूबियो ने चीन से अपील की कि वो संयुक्त राष्ट्र में अधिक रचनात्मक भूमिका निभाए, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री यातायात सुचारू रखने के प्रयासों में। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य नीति का मजबूती से बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक हथियारों की क्षमता को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। श्री रूबियो ने दावा किया कि हाल के अमरीकी सैन्य अभियानों से ईरान की सैन्य क्षमता में काफी गिरावट आई है। ईरान की नौसेना अब काफी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी कार्रवाई में ईरान के ड्रोन उत्पादन ढांचे को भी निशाना बनाया गया, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। अमेरिका की सेना ने कहा है कि कुवैत और बहरीन की ओर दागी गई ईरान की मिसाइलें या तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाईं या उन्हें बीच में ही रोक लिया गया। सेना ने यह भी कहा कि इसके बदले में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमान के अनुसार ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट क्वेश्म द्वीप पर स्थित ईरानी सैन्य जमीनी नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाकर किए गए। इस द्वीप पर एक डिसेलिनेशन संयंत्र भी है। एक रिपोर्ट।
अमरीकी सेना ने कहा कि कुवैत की ओर दागी गई दो मिसाइलें रास्ते में ही नष्ट हो गईं, जबकि बहरीन की ओर दागी गई मिसाइलों को अमरीका और बहरीन की सेनाओं ने बीच में ही रोक लिया। स्थानीय मीडिया खबरों के अनुसार ये घटनाक्रम तब सामने आए जब ईरान ने युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने के संबंध में मध्यस्थों से बातचीत बंद कर दी। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि बातचीत जारी है। एक अन्य घटनाक्रम में अमरीका की सेना ने कहा कि उसने अमरीकी नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरानी बंदरगाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे तेल टैंकर को रोकने के लिए एक मिसाइल दागी। सेना ने कहा कि नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में रोका गया ये सातवां जहाज था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है जिसके अंतर्गत विदेश विभाग को यह निर्धारित करना होगा कि क्या चीन ने तिब्बत के लोगों के खिलाफ नरसंहार या मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं। इससे मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर चीन पर कांग्रेस का दबाव और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
न्यूजर्सी के रिपब्लिकन सांसद क्रिस स्मिथ और न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट सांसद टॉम सुओजी ने कल तिब्बत अत्याचार निर्धारण अधिनियम पेश किया। इसके अंतर्गत विदेश मंत्री को अधिनियम लागू होने के एक वर्ष के भीतर तिब्बत में चीन की कार्रवाइयों का आकलन करते हुए कांग्रेस को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस विधेयक में तिब्बत के बौद्ध धर्म के चीन के अनुसार और तिब्बती भाषा और संस्कृति के दमन के उद्देश्य से चीन की सरकार की कार्रवाइयों की समीक्षा का भी प्रावधान है। रिपोर्ट में विदेश विभाग के निष्कर्षों और तीसरे पक्ष के विश्लेषणों का उपयोग किया जाएगा और प्रतिबंधों, वीजा प्रतिबंधों और राजनयिक उपायों सहित अमेरिका की संभावित प्रतिक्रियाओं की सिफारिश की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के तहत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के तहत अब प्रथम वर्ष के 100 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। ये सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान प्रांत में खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए अभियानों में 17 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना के अनुसार पिछले महीने क्वेटा के निकट हुई ट्रेन बम विस्फोट की घटना के बाद मस्तुंग, नुश्की, जेहरी, खुजदार और केच जिलों में ये अभियान चलाए गए। इस विस्फोट की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। आज विश्व साइकिल दिवस है। ये विशेष दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिल गया। SAAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का सामना सेमीफाइनल में भूटान से होगा। ये मुकाबला गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम ग्रुप बी में सभी मैच जीतकर शीर्ष पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। तिब्बत में चीन के नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के निर्धारण संबंधी विधेयक अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पेश। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।